The question arises, all other foursome pradayas who follow different philosophy which have faults, if they exactly follow the acharya and exactly follow their philosophy, can they realize Krishna or Vishnu or their worshipable deity and go to spiritual world, or they can't? They have to come to Achintya Bheda Bheda, and after that, when they follow perfectly, they can realize Krishna.
You are asking, so the other philosophy is a little dust, Vaishnav, like Madhva, Sri Vaishnav, Madh, but it's a little dust. I said, for example, only. So, दुष्ट है तो वो उनके अनुयायी जो है वो साधन पद्धति उनका जो दिया गया है फॉलो कर रहे हैं वो लोगों को विष्णु मिलेंगे क्या मोक्ष मिलेगा यानी तो वो लोगों को भी अचिंत्य भेदा भेद में ही आना पड़ेगा क्या पूछ रहे हैं
उनमें उनकी पूर्णता है जो जिसमें है समशीला भजन थी वही जो जिसमें भजन करता समान रुचि के अनुसार उसकी पूर्णता उसी में है उसी में विभिन्न प्रकार
सो हियर इन द आंसर ऑल्सो
प्राप्ति में अंतर है जैसे उत्तम भक्ति की प्राप्ति में उसमें अंतर है पर प्राप्ति उसी में पूर्णता है भूत प्रेत विषादादीन श्री सब जो जिसवर समशीला भजनती हो तो अपने अपने रुचि के अनुसार ईश्वर भी उसी प्रकार देवता होते हैं उनके उतने पूर्ण देते हैं पर परिपूर्ण होता है इसमें इसके लिए अलग करते हैं इसके रुचि भी अलग जिसको जिसमें अच्छा लग जाता समशीला होकर उनमें पूर्णता दे देते हैं उसमें इसमें आने की कोई संभावना नहीं है न तो प्रयोजन नहीं है क्यों उतना ही उसे आकांक्षा जगाते हैं उतना ही वो प्राप्त करके पूर्ण हो जाता ईश्वर है ना इसमें उसकी रुचि कैसे हो जाएगी ये सुनना भी नहीं चाहेगा जिसमें जिसकी निष्ठा हो जाती है वो उसी को सुनेगा अद्वैतवाद में जिसे रुचि है वो भक्ति की बात नहीं सुनेगा बिल्कुल नहीं सुनेगा नहीं।
मेरा सहजा ही बोल रहा था कि तुम लोग तुम वैष्णवों को देखे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता मगर तुम्हारा सिद्धांत तो द्वैतवाद है इसलिए गलत है बोलता तुम्हारा आचरण पूरा अच्छा लगता मेरे को तुम्हारा सौम्य वो नेचर अच्छा लगता मगर मैं पालन नहीं कर सकता क्योंकि सिद्धांत तो गलत है बोलता ऐसा है एक So Maharaj Ji says that depending upon their different tastes, different people do different bhajan and they get whatever they desire, they get. It's not that the path, those who follow those paths will not get anything. They get Lord Vishnu and whatever they are seeking, they get it. But there is difference in their prapti, which means whatever they attain and what we attain, there is a difference in that. And it is complete in itself. As Maharaj Ji has said in the earlier this thing also that Matsya comes and gives a knowledge which is complete in itself. So they attain him. So Lord manifests differently for according to different people, different seekers. Since they wish him to see him in this way and since they want to attain this, he becomes that and he gives them that. But the completeness is in Uttama Bhakti only. So it is people who follow this philosophy get Uttama Bhakti. They do not get the Uttama Bhakti. They get whatever they seek, they get Mukti.
If Mukti means to be in the same planet where world resides?
Yes. Different people seek different things. If you ask Madhva people, what do you want? They say Mukti. If you ask Sri Vaishnava also, they will say, what do you want? And they say Mukti. And they get that only. But Bhakti, Uttama Bhakti, they will not get it. And so Maharaj is saying that there is no question of their coming into this path and there is no prayojana also. There is no use, purpose also for them to come here because they are not seeking this. They first of all do not accept this at all. So Lord himself gives some kind of an inspiration to some people and then appears himself in a form that they are seeking and then gives them that.
Okay, so... Argument can be there, what they doing, they give their own interpretation to Shastra, and this one of the Nama apparat. So if they're doing that, how can they achieve Lord? You understand what I'm saying?
Shastra ko, मैं तो बोलता हूँ अगर हम मानेंगे कि वो उनके फिलॉसफी में थोड़ा दोष है तो एक नाम अपराध में एक है कि एक अपराध है कि अपना मन में जो आया वो भाष्य नहीं देना चाहिए शास्त्र को. शास्त्र का इंटरप्रिटेशन जो है ना भाष्य अपने मनमानी नहीं देना चाहिए, जैसा आचार्य के पास से ही ग्रहण करना चाहिए. तो अगर हम उनमें कुछ दोष है बोलकर ऐसा बोले तो एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि वो अपने मनमानी से दे रहे हैं ना, फिर उन लोगों को नाम अपराध आना चाहिए.
उनमें नाम अपराध नहीं होता, सेवा में नाम अपराध होता, उनमें नहीं होता. उनकी अधिकार में ये अपराध नहीं दिया गया, उनमें पाप दिया गया. पाप से मुक्त होकर के वो चलेगा और निषिद्ध निषिद्ध कर्म नहीं करेगा. जो उनको निषेध करते हैं वो नहीं करेगा. निषेध कर्म करने से जैसे रामादिवत वर्षित ये इसके विधान है, रावणादिवत न वर्षित तो प्रत्येक में ग्रहण करना और वर्जन करना दो रहता है. जैसे आप मेडिसिन ग्रहण करेंगे तो आपके लिए मेडिसिन ग्रहण करने के लिए कहा जाता है ये तुम इसमें ग्रहण करना, ये ग्रहण न करना. जब आपके कफ हो जाएगा तो वो कहेगा आज इसमें गर्म पानी ग्रहण करना, ठंडा पानी ग्रहण न करना. तो प्रत्येक में दो रहता, विहित और निषिद्ध, कर्तव्य और अकर्तव्य. तो जो वो कर्तव्य करता जिसके जिस अधिकार में होता तो उस अधिकार में वो कर्तव्य होता. जिसको उस अधिकार के लिए आरोग्य के लिए महानिकर है उसको निषेध करते हैं. इस प्रकार प्रत्येक में प्रत्येक करते हैं और दूसरे का नहीं सुनाते हैं. जो दूसरा को न बुद्धिवेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनम, उसे बुद्धि को विचलित न करना. जब गृहस्थ आश्रम करेगा तब उस समय संन्यास आश्रम की बात नहीं करेगा वो. जब इसमें अध्ययन के समय करेगा तो उसमें गृहस्थ आश्रम की बात नहीं करेगा. ये अध्यापक के ये नियम होता. क्यों? जिसमें जिसके निष्ठा है उसी को बढ़ाते हैं ईश्वर और दूसरे के यहाँ सुनने नहीं देते हैं, अवसर नहीं देते हैं. ये इनके शिक्षा के नियम है. इसलिए उसमें अपराध का नहीं होता. अपराध जानते ही नहीं, पाप ही जानते हैं. अपराध का प्रकरण ही भक्ति में है. भक्ति में साक्षात सेवा करने के लिए जाते हैं तब उनके अप्रसन्नता की बात होती है. उसमें तो आदेश पालन कर लिया, उतना ही सिखाते हैं. निषिद्ध न करना, विहित करना और उसका प्रायश्चित कर लेना. प्रायश्चित एक्सक्यूज मी नहीं.
मैं वहाँ वेद
पढ़ा. आई एम सॉरी, बताए सॉरी.
सो
इसे अनुतप्त का नहीं है. सॉरी का नहीं है. तो क्यों साक्षात सेवा करते हैं? ज्ञान पूर्वक अवरोध करता है. अप्रसन्नता कर काम ज्ञान पूर्वक करता, वो जानता, इसलिए उसे सॉरी नहीं चलता. न प्रायश्चित होता, क्योंकि प्रायश्चित में बल मिल जाता. बल यह मिलता एक बार गोवध करने से इस बार प्रायश्चित का विधान किया तो प्रायश्चित का बल वह दो बार भी कर लेगा वो. क्यों? वो कहता हम प्रायश्चित कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे. इसलिए प्रायश्चित का विधान नहीं करता. प्रायश्चित में बल मिलता उसका बीज रह जाता. क्यों? अहंता रहती है ना. जब मैं कर्म करता हूँ कर्म के अनुसार मैं कर्मफल अर्जन करूँगा और उसका निवारण कर दूँगा. असंविधान तरती ब्रह्मोत्तम कर लेंगे, फिर तिभिर जागर उत्तम कल्प के द्वारा तुम करा देंगे इस प्रकार से। तो वो एक बल मिलता करने के लिए, इसमें वो बल नहीं मिलता, इसलिए इसमें प्रायश्चित निषेध कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्यों ये समर्पण करी होगा ना, तब ये पृथक हो जाएगा प्रायश्चित विधान करने से, वो तो प्रभु की सेवा क्या करेगा, वो तो उन्हीं के होकर के उनके ही काम करेगा ना। ये सब निर्दिष्ट रूप से किया, ये इसका मनन करने का है, जानने का है।
सो फॉर देम देर इज नो अपराध, दिस नाम अपराध विल नॉट गो टू देम, बिकॉज दे फॉर देम दिस सेवा इज नॉट देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अपराध टेक्स प्लेस in when you are doing seva, when you, the seva is done in order to please the person, and aparadha means to displease the person to whom you are doing the seva. So so for whom you are doing the seva, so what they get is papa only, because they are given, they are prescribed certain activities, you know, as a path of their fulfillment. They are said that you should do this and you should not do this, just as in the case of medicine. Like in the medicine, when you get a medicine, you are asked to take this particular medicine with warm water, use only warm water and never use cold water. So something to be done and something to be avoided, that is there. So similarly, in this case also we have this, the principle which Maharaji explained yesterday, ramadivat vartatavyam natu ravanadivat, which means that you should follow the path of Lord Rama and never follow the path of Ravana. So there is some vihita karma that you have to follow like Rama and do dharma. The vihita means prescribed dharma, and then something which is proscribed, that which is rejected, is abhihita karma or nishiddha karma. So something Ravana's activity, the activity that Ravana has done, activities that he has performed, they should to be avoided. So so they follow that, and they have the adhikara for that only, and then they by following their prescribed activities and avoiding the activities which are proscribed or rejected, then they attain their goals. For them there can be no aparadha at all. So that is why for them this philosophy of seva aparadha is not taught. It's not understandable to them also. If you see their practices, no, every day they do some activity and then they immediately do the prayaschitta also in their activity, saying that if I had committed any mistakes in my this worship, let all papa should go away, they say at the end of it. So, but if you teach them that, you know, about aparadha, they will not understand at all. So that is why Lord never gives depending upon a person's eligibility. He gives only that knowledge to him. He will not give the knowledge, some other knowledge to him. Just as in the case of a guru, that for if a person is a grihastha, only that knowledge is given to him. The knowledge of sannyasa is not given to him. Similarly, for a brahmacharya, one who is following the brahmacharya, then him, that particular knowledge is given and not the knowledge of grihastha. And that is carefully kept in, dark. So, in order to, Lord does this in order to increase the nishtha of a particular person in a path, so that he will follow it perfectly and attain whatever goals that he wants to attain. So that is why there can be no aparadha for those, for the other sampradayas. In our case, there is aparadha because we are doing seva. And in our case, this concept of prayaschitta does not come at all, because we are basically trying to please the Lord and please the Guru through our seva. And we cannot say that I commit a mistake and then I will do it again. Because if there is wherever there is this notion of papa, and then if there is prayaschitta, then you get strength out of it. You know, you if a cow is killed, then if you take bath in Ganges or some, if you do something else, that papa will go away. And if you say it like that, he will kill it again on the strength of it. Because he says that he thinks that if I kill it again, then I can, this Ganges is there for me. I can go take a dip and become free from it. So now we are in our path, we are supposed to be getting engaged in the service of cows, and we are always serve them, please them. So if we have this idea of prayaschitta with us, and if prayaschitta is prescribed for us, then we will never do our service properly. So we always maintain this distinction, identity, and if, in this there is no samarpan also, there is no surrendering comes. Because if a person thinks that I am doing this activity, and if I do it wrongly, then I will do prayaschitta and it will go away, then he, that's a person can never surrender. He will always feel that I am the doer and I do it. And in the case of bhakti, there is total surrender. He becomes gurus or the lords and then works on behalf of the lord. And the only thing that he should be doing is the only duty for him is to please the guru in all his activities. And in pleasing, there can be no mistake at all. Because if anybody performs aparadha, Maharaj says that he performs it knowingly. He knows that this is an aparadha, and then knowingly he will do it. Which means that he knows that he should not be displeasing, and knows that I am his servant and I should be pleasing him. But knowingly he performs, and for them it can be no escape. So no prayaschitta at all.
But I heard that if you don't know the law, you still will be punished by the law of material nature, no? How is it if I don't know, I will not get offense?
Maharaj is not saying like that. The point which Maharaj is making, that aparadha is done knowingly. He knows that you know that you are his servant. And you, as a servant, you should be pleasing him. You know this. But in spite of that, you do activity to displease him. That's what he's saying.
शरीर प्राप्त करने के बाद मानव धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति ही चेष्टाशील होता, वही उसके प्रयोजन, और किसी कुछ प्रयोजन है नहीं। तो इसको संपन्न करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए उसको उसी प्रकार ही करना पड़ता, विहित कर्म निषिद्ध कर्म। विहित कर्म होने से पुण्य होगा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा, वो अपने लिए होता, इस बॉडी के लिए, इसी में चेष्टाशील लोग होता। इसलिए उसके दो पद्धति है, पुण्य करो, पुण्य आदेश पालन करके काम करो, बस इतना ही वो चाहता। इसमें अपने लिए होता, अपने को पृथक रूप से रख करके भक्ति मार्ग में अपने को पृथक रखता नहीं। पृथक रखने से धर्म अर्थ का मोक्ष आ जाएगा अपने लिए, पर उन्हीं को होकर के उनके सेवा करता, इसलिए मुक्त हो जाता। और पाप इत्यादि का उसमें आता नहीं, उसके परिधि में नहीं आता। ये अपने को रखता नहीं, अपने को प्रभु की हो कर देता। इसलिए पाप और पुण्य कहाँ पर रहेगा, दोनों को परित्याग करके वो अपना काम करता। पृथक रूप से भोग करने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के उसके पृथक सत्ता तो रखता नहीं भक्त। भक्त उन्हीं का हो जाता, इसलिए भक्ति के आभास मात्र से ही वो मुक्त हो जाता। और कर्मफल उसे आता नहीं, जीवन मुक्त हो जाता। अपने को पृथक रखेगा तभी तो अपने कर्म अर्जन करके उसको भोग करेगा। तो चतुर्वर्ग जहाँ पर है वहाँ तक अपने को अलग रखता वो, केवल ईश्वर को रखता, ईश्वर से लेने के लिए, अपर कुछ नहीं। उनके ईश्वर के साथ कोई प्रयोजन नहीं रहता, केवल अपना, जैसे वेतन लेते हैं इस प्रकार। और इसमें ईश्वर को ही चाहते हैं, अपने को नहीं चाहते हैं। उनको सुखी करने के लिए ये इसका स्वरूप बोध है। वो पृथक होकर के क्या करेगा, क्या लेगा?
Maharaj is explaining some more fundamentals to make this clear. Whoever is born with this body, they generally seek dharma, artha, kama, moksha, these four purusharthas only. And in order to get them, he should follow the prescriptions in the Shastra, the word of the Lord. Anything that you, if you want any fulfillment, it should be given by the Lord himself. And that is why he has to follow the prescribed activities, and then he should avoid the activities which are rejected in the Shastra. And by following them, if you follow the prescribed activities, if you follow the word of the Lord, then you get punya. And with punya, you get the fruit, the goal, whatever you seek, dharma, artha, kama and moksha. And in this, the different identity is maintained. I am different from the Lord. And we do everything for ourselves. Dharma, artha, kama, moksha is sought for myself, my sake. I don't desire the Lord here. It's for my goal. But in the case of bhakti, he desires the Lord. He gives of himself and he becomes Lord's. And then by becoming Lord's servant, he acts on behalf of the Lord for his pleasure. That is why in the case of bhakti, there is no question of any papa at all. In the case of dharma, artha, kama, moksha, if you don't follow what is prescribed, or if you do activities which are rejected in the Shastra, you get papa. For that you prayaschitta, all that is there. But in the case of bhakti, since he becomes, from the beginning, he says that I am yours, and he acts on behalf of the Lord, there can be, he is out of the realm of punya and papa at all. So he will not get any punya or papa, and that is why, in this path, even just by the abhasa of bhakti, you get liberated. And in the case of those who speak, if he maintains a different identities, automatically it falls into the body and he will be seeking dharma, artha, kama, moksha, the four purusharthas. So in four purusharthas, the focus is on ourself, that he wants his fulfillment. Why is he accepting Lord? Why is he accepting the Ishvara? Because it is the Ishvara who fulfills my goals. If I follow the order of the Lord and I get the fulfillment of dharma, artha, kama and moksha, that is why Ishvara is accepted. But his whole interest, attachment is on himself. But in the bhakti, it is the opposite. You don't focus on yourself, but you focus on the Lord. You want to please him. Your only desire is to please him, and you give up your identity, independent identity, and you start feeling that I am his servant. And that is why he only tries to please the Lord, and for him there can be no papa or punya, all these things. He goes beyond it. Just by serving him, Lord, like that, he becomes liberated instantly. The moment he accepts the Lord, he is free from all this. Over
6 or 9. Yeah, just one more small question. About offenses, it's like, for example, apparat to make, you know, like some people make business out of temple, you know, and this apparat, they will use bhakti. But what about if people make business on Vedas, you know, sell Vedic knowledge, basically teach it and, you know, sell it. Do this apparat, or that's okay?
Can you give an example? I will explain tomorrow.
Just...
One example, how he is making business. Small example. So that I can specify it. This is vague when you say they do business. Means.
Okay, somebody teaching Vedas and charging money for this.
Maharaj ji, ye pooch rahe hain ki bhakti ke naam par jo bhi business karta hai na, wo temple dikha ke, to ye to apradh padta hai. To jo ved hai na, वेदों के नाम, वेदों को से बिजनेस करता है, या माने वेद को पैसा लेकर पढ़ाता है, तो ये पूरा भी, इससे भी अपराध होता है क्या? पूछने
इसे अपराध नहीं होता, पाप होता है। ये सेवा नहीं करता, अपना बिजनेस करता, इसको अलग रख के इसको पोषण करता, वो ईश्वर की सेवा नहीं करता, अपनी जो प्रयोजन को मिटाता उससे। इसलिए ईश्वर ने निषेध किया जो देवों में पूजती जो शास्त्रों में पूजती है क्यों उसका हेय करता जैसा सालग्राम है अब उसमें भांग घोटेंगे तो आप पत्थर से कर सकते हैं दूसरे से तो जो पूज्यास्पद है वो सालग्राम से यदि आप भांग पीसेंगे तो उसमें अधिक कुछ नहीं दूरी तो होगा क्यों आपको भांग पीसने के लिए पत्थर है मजबूत पत्थर है ये पूजा के लिए किया गया पूज्यास्पद नहीं तो अधिष्ठित हो रही इसमें उस काम में विनियोग तुम अपने लिए करोगे अपने अहंता से करोगे अपने शक्तिमत्ता से हम प्रभु हैं हम जो कुछ कर सकते हैं ये पाप होता तुम बिजनेस करोगे तो बिजनेस के लिए अपर वस्तु है जो पूज्यास्पद है जो ज्ञान है उनको तुम क्यों करोगे इसलिए ईश्वर ने निषेध किया क्यों उसमें अवज्ञा हो जाएगी जो जिसका बिजनेस करता तो बिजनेस लब्ध जो वस्तु है अर्थ उसमें महत्व रहता और दूसरी वस्तु में महत्व नहीं रहता तो जो महत्व की वस्तु उसको जो महत्व नहीं देते हैं तो उसका पतन होता इसलिए उसको निषेध करते हैं जो इसके द्वारा वो काम न करो ये ऐसा यदि वो करता तो उसमें उसका पाप होता निषिद्ध होता अनिषिद्ध जनि तो उसका दूरदृष्ट होता दुख भोग करता
नॉट इट डज नॉट बिकम अपराध बट इट बिकम्स अ पापा sin sin because he is in the realm of that punya papa he is doing Veda is studied in order to become liberated dharma artha kama and moksha it gives all purusharthas so it is said in the shastra that we should not do business out of deities or out of Vedas maharaj gives that example of one shaligrama to explain why we should not do like that So, Shaligrama is there, it's a puja vastu, means it's worshipable for you. And if you have bhang, what do you call in English? Some intoxicant. So, if you want to rub that bhang on a stone, there are other stones for you. You should not do it on the Shaligram Shila. Right? Because it's a worshipable thing. It becomes, you are directly rejecting and you are Since you are doing whatever you want to do, you are considering yourself as the Lord and you are not bothered about the fruit at all. So similarly, this God and Shastra, they are all worshipable for you. So you should not do any business out of it. Because if there is business, then automatically there is disrespect. Because when you do business out of something, what happens is that where is the importance? The importance is not on the Veda, but the importance is on the money. You give importance to money. So when you have importance to money, you don't have respect for the Veda. If you sell Veda or if somebody buys Veda without listening from a guru, by serving him, then the focus is on the money, wealth. So he gives more prominence to the wealth and he does not give prominence to the Veda itself. And that is why It is rejected and we should not do.
So Vedic path, disciple go to Guru and he study from Guru and he serve Guru. So this is what prescribed.
Yes.
But if Brahmana goes, for example, sell Vedas and charge it, this is aparadha.
Yes, because he is making aparadha and neither he will have respect nor the person who is buying has respect. Will have respect because the focus for them is on money, not on Veda. So, if you want to do business, Maharaj says that you have other things, no? There are various other things which are there for you. You can do business out of them. Why do you want to do business with deities or Veda? Right? Just as Maharaj gave the example, if you want to rub this intoxicant, you have other stones. Why do you have to use this? So to do business, there are other things.
What about if people do business out of astrology? You know, they do charts and charts. Is that okay?
yeah, astrologers ke paas jaake paisa khub deke pura kuch karwa rahe na. तो ये पूछ रहे हैं कि वो लोग पैसा लेके कर रहे हैं हमारे को, ये प्रायश्चित करा रहे, जो भी करा रहे हैं, फिर ये भी ये ठीक.
ये
साइकोलॉजी इसको चेंज करता, कुछ अर्थ चला जाता, कुछ परिश्रम होता तो उसमें थोड़ा संतोष होता. पर ये जानना चाहिए यदि उसमें सामर्थ्य हो, उसका धन चाहिए. इसका जो प्रवृत्ति करता धन के लिए करता, तो वो अभिज्ञ है, वो जानता ये अच्छा है. कोई भी व्यक्ति मेडिसिन के द्वारा, किसी के द्वारा, तंत्र के द्वारा, किसी प्रकार के द्वारा यदि किसी के दुख निवारण करे तो सबसे अच्छा है, बेस्ट है. ये तो आवश्यक है, किसी मेडिसिन हो दूसरे वो सुखी बने, किसी का दूरदृष्ट हो उसको अच्छा कर दे, किसी का हेल्थ घट गया वो अच्छा कर दे. पर चीट करना ये अच्छा नहीं होता. एक ही प्रिंसिपल जानना चाहिए. यदि उसके मेडिसिन संबंध ज्ञान है तो अपना रोग निवारण क्यों नहीं करता. यदि वो दूसरे के दूरदृष्टि और गरीबी और दुख दूर करता, दूर करने के लिए अनुष्ठान जानता, तो अपने लिए क्यों नहीं करता. वो स्वयं ज्ञानवान है तो स्वयं क्यों नहीं धनी हो जाता. जो चिकित्सक होता वो अपने शरीर का रोग क्यों नहीं निवारण करता, दूसरे का क्यों करने के लिए जाता. इस अंश में जानना आवश्यक होता. तो पैसा के लिए दूसरे को प्रवृत्त करके और दूसरे के उत्तम अदृष्ट कर देंगे, लक्ष्मी ला देंगे, निरोग कर देंगे, ये करने की क्या आवश्यकता है. अपना क्यों नहीं करता जो तुम अपने जानते हो. तो वो तो कर्म परम दरिद्र रहता, पोर हो करके रहता, क्यों दूसरे से छीन करके वो अपना निर्वाह करता. वो उस विद्या के द्वारा अपना क्यों नहीं करता. मैं इसको जानना चाहता हूँ. आवश्यक है विद्या की, परम आवश्यक है. क्यों इसके द्वारा दूसरे का उपकार होता. जैसे मेडिसिन जानता डॉक्टर, तो मेडिसिन के द्वारा दूसरे के रोग आरोग्य कर दे, ये है ना. तो अपना कर ले पहले. एवरीबडी एवरी डॉक्टर वो सिख. एवरी और एवरी जितने ये तंत्र विद्या जितने हैं वो परम पुअर रहता. परम तो इसको ही जानना चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए. विद्या अच्छी है और इसको जो किया गया था वो दूसरे के उपकार के लिए किया गया था. तो वो विद्या उसका अर्जन करके जान करके प्राचीन काल में इसका बिजनेस नहीं करते थे, उसको करके दूसरे के उपकार करते थे. वो तत्वदृष्टा होता था. तत्वदृष्टा मीन्स जो डॉक्टर है वे पल्स जानता, रोग जानता और उत्तम मेडिसिन देता. ये रोग आरोग्य करना ही उसका धर्म रहता. भिषक चिकित्से तो निदान हुई थे. भिषक सब भेषज रोगों प्रतिकूर्वित, ईश्वर का आदेश है. जो चिकित्सक है अपनी औषधि के द्वारा दूसरे रोग निवारण करे, जैसे वो कर्मठ होकर चले, सुखी रहे, दीर्घ जीवन लाभ करे, ये उसका धर्म रहा. इसके माने वो बिजनेस करना ये तो नहीं है. जैसा डॉक्टर रहता हमारी चिकित्सा करने के लिए, वो डेट हो जाता तभी फीस ले जाता वो, और इंजेक्शन देने से उसकी डेट हो जाता, तब क्यों जानता नहीं वो कुछ ना देने से पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रकार नहीं, उसका है विद्या बहुत अच्छा है और दूसरे के उपकार के लिए आता, पर उपकार हो, पर स्वयं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह से अपने रोग अपने परीक्षा करके देख लो, या अपने रोग आरोग्य होता तो दूसरे के दो, कोई भी उसमें अनुष्ठान करे तो अपना देख लो, गरीबी के लिए ही वो अनुष्ठान करता है जो पैसा मिल जाएगा, बिना पैसा से क्यों नहीं करता वो बिजनेस ना, उसमें उसका महत्व नहीं है, दूसरे के लिए महत्व है, तो वो क्यों करता, अपने एक अनुष्ठान कर ले और धनी बन जाए, गरीबी मिटा दे, वो नहीं होता। इसलिए मैं उसको उस वक्त देखता हूँ, मैं मानता हूँ सब विद्या को मानता हूँ, पर दूसरे के उपकार में लगे ना, अपने उपकार में लगे, दूसरे को उस वक्त प्रलुब्ध करके हम ऐसा कर देंगे, नवग्रह का जाग करा देंगे, तो उसमें मैं सहमत नहीं, अपना पहले कर लो, अपनी गरीबी मिटा लो, उनसे पैसा ले करके 10 को बैठा कर रखो, पैसा ले लोगे, तिलक लगा देगा, वैसे ऐसे बांध दे वो क्या करे। यदि उसका होता तो अपना पहले मिटाता वो, तो अपना उसके द्वारा क्यों मिटाएगा, निरंतर उसे निरंतर दरिद्र रहता, जब दूसरे से लेता है तो निरंतर दरिद्र रहता, वो सफलीभूत नहीं होता, नहीं होता कभी किसी प्रकार से नहीं। ये देखिए जो लोग शास्त्र व्यवसाय करते हैं उसका शरीर शास्त्र भी नष्ट हो जाता और दरिद्र भी रहता। इस प्रकार जो लोग ये अनुष्ठान करते हैं उनकी दशा देखिए पहले से, सब उससे पूर्ति नहीं होती है, और यदि वो दूसरे का उपकार करता उससे उसका ज़्यादा मिल जाता है, क्यों वो संतुष्ट होकर को अधिक दे देता वास्तविक उपकार करने से, और भगवान के पास भी ये संतोष प्राप्त करता है कि विद्या का है जो दूसरे का उपकार करो, दूसरे का रोग निवारण करो, दूसरे का दारिद्र्य निवारण करो, दूसरे का शत्रु निवारण करो, इसीलिए हुआ था ये सब। ऐसा नहीं जो उसका प्रलुब्ध होकर के अपना कर लो, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं उसमें उस विद्या में श्रद्धालु नहीं हूँ, विद्या मानता हूँ पर उस रीति को नहीं मानता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ जब वो अपना गरीबी मिटा ले, अपना दारिद्र्य मिटा ले, अपना शत्रु मिटा ले, अपना रोग निवारण कर ले, ऐसा नहीं। विद्या इसीलिए ईश्वर ने किया था, और प्राचीन काल में लोग इसी प्रकार से करते थे, अभी तो उसका अनुकरण करते ना। ज्योतिषम के द्वारा, अश्वमेध के द्वारा, दर्श पूर्णमास के द्वारा ये सब होता था पहले, अब नहीं होता, अब क्रिया मात्र रह गई, तब कैसे होगा, क्यों उन लोगों ने इसका जो लोग करते हैं उसके केवल अभ्यास कर लिया है, पैसा उपार्जन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये दूसरे के उपकार के लिए ये परम आवश्यक है। चिकित्सक भी मेडिसिन उस तरह से करते हैं, बाजार से ले आते हैं, पैसा ले लेते हैं, बस हो गया, प्रवचन कर दिया, रोग आरोग्य कोई बात नहीं। ये लोगों को सुखी करने के लिए, संपन्न करने के लिए, निर्भय करने के लिए सब विद्या हुई थी, बिजनेस करने के लिए नहीं। बिजनेस करने से उसमें वो परिश्रम नहीं करता, ठग विद्या करता तो इसलिए आवश्यक है कि उसका अच्छी तरह से तत्व दृष्टा हो, उसके अपना अच्छी तरह से पहचान करे और उसके बाद करे। उसमें और भी तो दुख होता, एक का अनुष्ठान कर दिया कह दिया जो तुम्हारे इस प्रकार से ग्रह वैगुण्य नष्ट हो जाएगा, हुआ नहीं, पैसा भी गया तो उसे दुख ही होता ना, तो वो पाप लगता है उसे, परपीड़न होता ना, पापाय परपीड़नम, दूसरे को जब दुख देते हैं तो ये पाप होता। ईश्वर ने कहा मा हिंसा सर्वभूतानि, प्राणी मात्र के प्रति दुख मत देना, तो ये दुख देना है। उस अर्थ के द्वारा उसका शरीर यात्रा निर्वाह होगा कि सत्कर्म कर पाएगा, उसको वो छीन लेता असत वाक्य के द्वारा, झूठ वाक्य के द्वारा, वो कर्म कर दे उस वक्त जिस प्रकार करता उस प्रकार दूरदृष्टि नष्ट हो जाता, जाग कर दे दूरदृष्टि नष्ट हो गया। नहीं, और मिथ्या वाक्य में लोग प्रसन्न हो जाते हैं, करते हैं उसे तो उसे डबल पाप पड़ता उसे और डबल पाप, द्विगुण पाप होने के कारण उसकी जो संपन्नता और निरोगता वो नहीं होता। हर एक डॉक्टर को देखिए और जितने ये तांत्रिक होता अनुष्ठानकारी उसके देखिए, उसके परिवार देखिए, उसे देखिए, ज्योतिषी के परिवार को देखिए, नो क्यों उसमें आत्मा में जो दुख पहुंचता, सत्य यदि कह दिया जाता जो उसका रोग आरोग्य कर दिया गया, उसका जो ग्रह वैगुण्य उसका नष्ट कर दिया गया, तब तो उसे पुण्य हो जाता, उसे फलीभूत होता, बड़ा हो जाता। जब उसे पाप आ जाते पड़ता तो दूसरे के पाप नष्ट करने के अपना पाप कर लेता, वो पैसा उसका नष्ट हो जाता, असत बर्ताव से दूसरे बर्ताव से खा लेता, अब वो उसी प्रकार रंग कर रहता, शरीर में व्याधि हो जाती, निरंतर बिगड़ रहता। इसीलिए जो ओझा दूसरे का भूत निवारण करने के लिए जाते हैं, भूत सब उसी में आ जाता सांप का सांप झाड़ने के लिए आते हैं, विष निवारण करने वही मरता उसी सांप के विष से वो मुख से उसका चूस करके विष निवारण करना चाहते हैं तो उसे लग जाता है, मर जाता है। तो ये बिजनेस का फल है, तो इसका देखना चाहिए।
So, Maharaj is saying that basically what he is saying is that all vidya is basically created in order to help the others.
All knowledge.
All knowledge. So, but people do it for business. That is where all the problem comes. And he wants money in order to, if he really can give money to others by doing shanti to their grahas, or if the grahas have, there is some problem in the grahas, if he can remove that, then he should first experiment on himself. Why should he promise all these things to the people and get money from him and so to become rich? Why can't he do all these things on himself first
and become rich?
If he does that, then it is all right. Similarly, if a doctor also,
If we can cure other people, he opens a clinic saying that I can cure other people. But he should first of all experiment on himself and see that it cures him or not. So if you see that Maharaj is saying that these people, doctors and the tantrics, you know, or whoever can do these things, they are full of diseases and they are poor. Doctors themselves are full of diseases. Just as the most crazy people in the world, you will see in psychiatrist. दूसरों को psychology सिखाने जाते हैं और वो खुद डरते रहते हैं पागल रहते हैं वही थोड़ी बात से so it's like that so then So Maharaj is saying that I want to know this first of all. You know, whenever this, I accept Vidya, I accept knowledge, and I accept that this knowledge has the potency to do things. I accept medicine also, because it gives happiness to others. If it can really cure and if it can make someone rich, then it's all good, right? But the problem comes is that it often does not work. If it, I just wants to see in the people, that whoever wants to, whoever is promising that they should be able to do it on themselves. I ask them this question. And since they often do not do this, then I don't accept them. And this either this tantric or whoever, the doctor earlier days, he was a tattva-drashta. Tattva-drashta means, you know, by checking the pulse, he would know what is your problem exactly. He would do, you know, diagnose you properly, and after diagnosing properly, he will cure you. He will not do some, you know, arbitrarily say something, you know, whatever comes to his mind by manipulation. People say that you have this, put one medicine and then, you know, manipulate you. They do not know exactly. Diagnosis they cannot do properly, because if you can diagnose properly, then cure you can easily give. So and in those days they did not do all this thing out of business. They developed all these things, they cured with a genuine feeling of curing the person, so that if he remains healthy, then he will be able to do his karma properly and he will remain opulent and by working. But nowadays it's not like that. The doctor, if you see that he will give you the injection and the expiry date is already over, he wouldn't bother about it and he will give you the injection. He will give you medicines like that. Right? So many kinds of cheating takes place in the case of modern medicine. So Maharaj is again and saying that Vidya is good if it can help others, but it's not often the case. So he says that like in homeopathy, whatever medicine they create, they first experiment with themselves. They test it like that. And then if it can really cure them, then they give it to others. It was how it was. So that is why Maharaj is saying that all this which you are talking about is not for myself. I do not accept this. I simply ask this question, that why do you accept other people in order to become rich? And the motive should always to make the other person free from daridra, means poverty, and shatru means enemies. So they used to do all these kinds of yajnas, agnistoma, jyotishtoma, they used to do, and they were getting perfect results. But nowadays you do not see like that. Only what remained is that all that spirit is gone. They used to please the people also, they used to please the God also, and they used to get punya also. But all that is gone, only the activity remained. You know, they simply do some activity, but all that mood is gone. The purpose is only to do business, and they use, you know, most often what works is that not the karma that they do. Their preaching works. Maharaji says that they preach, I mean, they speak to you so nicely that you fall into the trap of it and then you do it. And why do you like it? It's all psychology, Maharaji says. That when somebody does that, you know, you become motivated and you act properly and you feel that all grahas, whatever problem is there, is all gone. Why do you feel like this? Because you have paid some money. And then you have done some parishrama, means some activity. So you have feel that, you feel that, okay, I have done something and now I have. So psychologically you prepare yourself like that, that I have done something and something is gone. And I am okay now. So that is why nowadays there is no tattva drashta, and everybody is doing it for cheating this thing. And so they have, why are they poor? These people are full of diseases and poverty because somebody is coming with faith to you, mm-hmm. and they are spending their money, their energy, their time, and you are say promising that I will cure your problem, disease, or I will cure your poverty. I will see to it that all your negative things in your grahas go away. But if it doesn't work, then you are making that person's atma unhappy. That person's soul, you know, he's feeling unhappy. And because of which you get this kind of double papa. See, on the first in the first place you are cheating. Mm-hmm. You are doing a business out of it. This is papa. Mm-hmm. Your motive is not to cure that person. And on the second, on the other hand, you are also creating some, you know, pain in the soul. In Shastra it is said that Mahimsya Sarva Bhutani. Means no entity should be given pain. So since you are giving pain to the other persons, it becomes a papa. You are doing something which is rejected by the Lord. So Maharaji says that in one example he gives, that if you see that all these bhutavaidyas, means people who will say that I will remove the bhuta in you, the ghost. The ghost comes and attacks them actually. They leave the person, that person, and comes and attacks him. Now all those persons who says that I will take out the poison of the from your body. So with their mouth they try to suck the blood out and try to remove it. And they often get diseases and they die out of this poison only. And they are